नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉलीबॉल और भारत के विकास की गाथा के बीच कई समानताएं बताते हुए टीम वर्क, संतुलन और दृढ़ संकल्प को साझा सूत्र बताया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने खेल के क्षेत्र में कई सुधार किए हैं।
स्पोर्ट्स सेक्टर में भी सरकार ने बड़े रिफॉर्म्स किए। नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025, इस प्रकार के प्रावधानों से सही टैलेंट को अवसर मिलेगा। खेल संगठनों में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। देश के युवाओं को स्पोर्ट्स और एजुकेशन दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मनरेगा भ्रष्टाचार का एक पर्याय बन चुका था, जहां श्रमिकों को दरकिनार करके उनका शोषण किया जाता था। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस विकसित भारत जी रामजी कानून को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी कानून श्रमिकों के हित में है। गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कल पार्टी कार्यकर्ताओं से तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन देशभर के विधानसभा चुनावों में लगातार जीत हासिल कर रहा है और उम्मीद है कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी यही सिलसिला जारी रहेगा। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर फ्रांस और लग्जमबर्ग की सरकारी यात्रा पर रवाना हो गए हैं। एक सप्ताह की यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर पेरिस में फ्रांस के नेताओं से मुलाकात करेंगे और विदेश मंत्री जीन नोएल बैरोट के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत फ्रांस रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत हुई प्रगति और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में डॉ जयशंकर लग्जमबर्ग जाएंगे और वहां भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। 4 दिन का यह सत्र 8 जनवरी तक चलेगा। सत्र में प्रदूषण, पर्यावरण तथा शीश महल परियोजना और दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग डीएसआईआर के अंतर्गत औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए निर्धारित 3 साल की शर्त को हटा दिया है। नई दिल्ली में डीएसआईआर के 41वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि 3 साल की शर्त को हटाने से डीप टेक स्टार्टअप्स को तेजी से विकास करने में बढ़ावा मिलेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग मजबूत करने के कार्यक्रमों का ये एक हिस्सा है। जनरल द्विवेदी 2 दिन की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात में रहेंगे। भारत ने वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रम पर गहरी चिंता व्यक्त की है और सभी संबंधित पक्षों से संवाद के माध्यम से मुद्दों का समाधान करने का आह्वान किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत वेनेजुएला की स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों के हितों और सुरक्षा के प्रति समर्थन भी व्यक्त किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका वेनेजुएला के शासन में दैनिक भूमिका नहीं निभाएगा। रूबियो ने कहा कि अमेरिका वेनेजुएला पर लागू तेल नाकाबंदी को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित करेगा। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने सुझाव दिया था कि निकोलस मादुरो के हटने के बाद अमरीका वेनेजुएला का प्रशासन संभाल सकता है। झारखंड के रांची और जमशेदपुर में भीषण शीतलहर के चलते 6 जनवरी तक सभी विद्यालय बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भीषण ठंड और शीतलहर की चेतावनी दी है। रांची में अगले आदेश तक शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों के लिए दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी भारत में भी आज घना कोहरा रहेगा। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में ठंड रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।